सुधीजनों देवियों, अभी दो दिन पहले, दो तीन दिन पहले हमने कृष्ण जन्माष्टमी मनाई। श्री कृष्ण पूरे संसार के गुरु हैं, जो वर्ल्ड टीचर, आज उन्हीं पर थोड़ी देर चर्चा करेंगे। वसुदेव सुतम कृष्णम कंस चाणुरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सजनों, ये बारिश के मौसम में जो भाद्रपद मास है, कृष्ण पक्ष में डार्क हाफ में आठवीं डेट है, आठ था अष्टमी तिथि, इसीलिए इसको जन्माष्टमी कहते हैं। अष्टमी का मतलब एट्थ, आठवां डेट है, तिथि है। संसार में अनेक तरह के लोग जन्म लेते हैं, जो अपने परिश्रम से बहुत महान भी बनते हैं। कोई बहुत ज्ञान कमाता है, कोई धन कमाता है, कोई बहुत ऊंचे पोस्ट तक जाता है, अलग अलग तरह के, कोई बहुत बड़े समाज सेवी होते हैं, लीडर बनते हैं, फिलोसोफर बनते हैं, पर ये सब हिस्ट्री के बुक्स में रह जाते हैं। ज्यादातर लोग महान होते हैं, पर कुछ गिने चुने लोग ऐसे होते हैं जो हो सकता है कि बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं है, हो सकता है उनके पास बहुत ज्यादा पावर नहीं हो, हो सकता है कि वो बहुत बड़े देश के बहुत बड़े लीडर ना हो, पर उसके बावजूद भी दुनिया उनको हजार हजार सालों तक, हजार हजार सालों तक मानती है, रिस्पेक्ट करती है। और इंसान की जैसी एक कमजोरी है, वो उस हर अच्छे इंसान को ईश्वर बना देता है। उसी कोटि में हम थोड़ी बहुत महाभारत की चर्चा से शुरू करेंगे। क्यों कृष्ण महाभारत के युग में इतने बड़े बड़े कैरेक्टर थे, इतने बड़े बड़े चरित्र थे? भीष्म था, द्रोण थे, युधिष्ठिर जैसा सत्यवादी, सच बोलने वाला, जो पूरी जिंदगी में कभी झूठ बोला ही नहीं है, और तीन छोटी छोटी माइनर झूठ बोले उसकी, सिर्फ पूरी जिंदगी में तीन ही बार उन्होंने वो भी बड़े माइनर झूठ बोले, युधिष्ठिर जैसा व्यक्ति, द्रोण जैसा इतना बड़ा ज्ञानी, वो ज्ञानी भी जो शास्त्र विद्या में उतने ही एक्सपर्ट हैं जितने शास्त्र में अध्यात्म में एक्सपर्ट है। व्यास जो खुद महाभारत के रचयिता हैं, ऋषि हैं, तपस्वी हैं, इतने बड़े बड़े कृष्ण के जो जो कंटेम्प्ररी साथी थे, जो सामयिक लोग थे, वो कोई छोटे मोटे नहीं थे। उसके बावजूद भी कृष्ण इतने ज्यादा पूज्य हुए, क्या कारण है? आप कितने भी बलशाली हैं, ज्ञानी हैं, धनी हैं, पब्लिक के लिए ये मायने नहीं रखता। पब्लिक के लिए मायने रखता है कि आपके पास जितना भी धन है, ज्ञान है, बल है, शक्ति है, वो पब्लिक के लिए कितना आप उसको यूज करते हैं। आप बड़े धनी हैं तो आप अपने लिए हैं, जनता को उससे आपसे कोई लेन देन नहीं है। पर आप गरीब भी हैं, आपके पास कम पैसा भी है, अगर उस पैसे को आपने जनता के लिए प्रयोग किया तो जनता आपको महान मानती है। तो जिस भी व्यक्ति ने अपनी शक्ति को, अपना सामर्थ्य को, अपनी विद्या को, अपने ज्ञान को सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए लगाया, वो हमेशा महान बने। वो मॉडर्न हिस्ट्री में भी आप जीसस को देखें, बुद्ध को देखें, शंकर को देखें, दयानंद को देखें, ऐसे अनगिनत लोग मिलेंगे जिन्होंने दूसरों के लिए जीवन दिया, वही वो भगवान की कोटि को प्राप्त कर जाते हैं। युधिष्ठिर बड़ा सत्यवादी था, धर्म पर चलने वाला था, इसलिए उसको धर्मपुत्र कहा। हर चीज वो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटिव वे से धर्म और अधर्म को विचार करके करता था, पर इतना ज्यादा धार्मिक हो गया कि जुआ खेलने में भी उसको धर्म दिखा। जब पत्नी की बाजी लगाई गई, बोली लगाई गई, तो भी उसको उसमें धर्म दिखा। ऐसा कोई मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। जब आप स्क्रिप्चर ओरिएंटेड हो जाते हैं तो आप अंधा हो जाते हैं। जब आप किताबी कीड़ा बन जाते हैं तो आप समाज को समझना भूल जाते हैं। ईश्वर ने हमें जो ज्ञान जो 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 एक पर्सनालिटी दी, दो चीजें दी, एक तो हमारा इनर इंटेलेक्ट है, अपनी बुद्धि, दूसरा शास्त्र है। समझदार व्यक्ति वो है जो शास्त्रों को अपने दिमाग के अनुसार यूज करता है। जो केवल शास्त्र यूज करता है वो युधिष्ठिर जैसा ही हो जाता है, जिसकी बीवी को पब्लिक में बदनाम किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है, जो कहता है ये धर्म है। इसीलिए युधिष्ठिर कितने भी धार्मिक थे पर कभी पूजा के लायक नहीं बने, पब्लिक उनको कभी उस दृष्टि से नहीं देखा। द्रोण बहुत बड़े ज्ञानी थे, विद्वान थे, एक अच्छे टीचर थे, पर प्रॉब्लम है कि द्रोण की पूरी पूरी जो पूरा जो ज्ञान है, जो कुछ है, वो बड़ा बायस्ड हुआ। वो पहले द्रोण ऐसे विद्वान हुए उन दिनों, ऐसे गुरु बने जो ट्यूशन किया। ये भारत में ट्यूशन ज्यादा अच्छा समझते हैं इंडियन लोग, क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए जरूर ट्यूटर रखते हैं घर में, जो आकर के पढ़ाए पैसा लेकर के स्कूल के अलावा। मेरे ख्याल से अमेरिकन कल्चर में कम है ये, हमारी ये पुरानी ट्रेडिशन है, ये द्रोणाचार्य ने इससे शुरू कराया है, इसलिए हम उसको आज भी नहीं छोड़ पाते हैं। कि घर में आकर टीचर पढ़ाया और पहला टीचर द्रोण था, नहीं तो सब गुरुकुलों में जाते थे। गुरु के पास राजा का बच्चा जाता था, गरीब का बच्चा जाता था। द्रोण की मजबूरी थी वो हम मानते हैं, वो इतने गरीब थे और इस तरह के उनको जलील इतने अपमान सहना पड़ा, मजबूरन से करना, पर तब भी वहीं नहीं रुके। वो एकलव्य जैसा मेधावी बच्चे को अंगुली कटवा दिया क्योंकि अपने शिष्य को बड़ा बनाना था। वो इतने बड़े ज्ञानी होने पर भी दुर्योधन का हर पाप का साथ दिया, यही धर्म का नाम लेकर के कि मैं क्या करूं, जिसका अनाज खाया हूं, जिसका नमक खाया हूं, उसी का साथ दूंगा। मैं नमक हराम ही नहीं कर सकता, मैं कत्ल कर सकता हूं, मैं खून कर सकता हूं। ध्यान रखिए, शास्त्रों को दिमाग से प्रयोग नहीं करेंगे कितनी बर्बादी होती है। आपके पास दो चॉइस है, या तो आप नमक हरामी करिए या लोगों को जबरदस्ती कत्ल करिए। द्रोण ने वो चुना कि मैं नमक हरामी का पाप नहीं उठा सकता, पर मैं पाप का साथ देकर लाखों लोगों को मार सकता हूं। भीष्म बहुत बड़े कैरेक्टर है और सबसे पूजनीय महाभारत काल में पूजनीय पात्र है। मैं इन पात्रों को इसीलिए आपके सामने रख रहा हूं, इनके बीच में जब कृष्ण की चर्चा करेंगे तब आपको समझ में आएगा कृष्ण क्यों जगत गुरु है, क्यों महान है। भीष्म जैसा वीर, ज्ञानी, समझदार व्यक्ति उस समय में कोई दूसरा नहीं था, और उसके बाद उसके पहले भी हजारों सालों तक कोई नहीं था। पर भीष्म ने अपने बूढ़े पिता के काम वासना की तृप्ति के लिए ये शपथ लिया कि उनके बूढ़े पति पिता को किसी लड़की से प्यार हो गया, उनको शादी करना चाहते था, और लड़की के पापा ने शर्त रखा कि मेरी बेटी तब मैं आपको दूंगा अगर मेरी बेटी का बच्चा ही राजा बने, क्योंकि उन दिनों ट्रेडिशन था जो बड़ा बेटा होता है वो राजा बनता है, और भीष्म बड़ा था। दूसरा शर्त यह है कि जो आपका बड़ा बेटा है वो शादी भी नहीं करेगा, कहीं ऐसा ना हो कि उसका बेटा हो जाए तो वो गद्दी पर बैठ जाए, तो मेरी पीढ़ी मेरी बेटी की पीढ़ी दर पीढ़ी राजा बनेंगे। अपने पिता को खुश करने के लिए भीष्म ने ये शपथ लिया कि मैं विवाह भी नहीं करूंगा, मैं सिंहासन पर बैठूंगा नहीं, मैं राजा भी नहीं बनूंगा, और मैं विवाह भी नहीं करूंगा जिससे कि मेरा बच्चा आगे आकर क्लेम ना करे कि मैं राजा हूं, और तीसरा है कि मैं हमेशा जो भी सिंहासन पर बैठे उसका साथ दूंगा। और जीवन भर उन्होंने निभाया, और हम लोग उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं और गुण गाते हैं। जब भी कोई आप में से हम में से प्रॉमिस जो प्रॉमिस करते हैं और उसमें जो अड़िग रहते हैं तो हम कहते हैं भीष्म प्रतिज्ञा। पर रिजल्ट क्या हुआ, भीष्म अपने भीष्म प्रतिज्ञा पर अड़े रहे, महाभारत के युद्ध में करोड़ों लोग मारे गए क्योंकि भीष्म पर भी अपने भीष्म प्रतिज्ञा पर अड़े रहे कि सिंहासन पर कुत्ता भी बैठे तो मैं उसका साथ दूंगा, चोर भी बैठे मैं उसका साथ दूंगा, दुर्योधन बैठा हर तरह के पाप करता गया, भीष्म नालाचार थे मैं क्या करूं, युधिष्ठिर लाचार थे धर्म के नाम पर, द्रोण लाचार थे नमक के नाम पर, भीष्म लाचार थे अपने प्रतिज्ञा के नाम पर। और व्यास महर्षि व्यास खुद बोलते हैं महाभारत में, ऊर्ध्व बाहु विरोम्येश नहीं कश्चित शृणोमि माम, मैं घर घर जाकर सबको समझाता हूं ये गलत है ये सही है सुन लो, कोई सुनता ही नहीं है। आज भी कोई नहीं सुनता, जो ऋषि मुनि होते हैं जो शास्त्रिक बात होता है लोग सिर्फ सुनते हैं एंटरटेन के लिए, जीवन में उतारने के लिए बहुत कम लोग शास्त्र को सुनते बड़े लोगों को सुनते। तो व्यास भी उसी तरह का एंटरटेनिंग का एक कैरेक्टर बन गया था हमारे जैसा, जिसको सुन करके एंटरटेन किया जा सके पर लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं किया जा सके। तो व्यास खुल के बोलते थे, मैं हाथ उठा उठा कर बोलता हूं, अरे कोई सुन के इंप्लीमेंट तो कर लो पर कोई सुनता ही नहीं है, ये लाचारी थी व्यास की। तो क्या समाज ऐसा ही चलता जाए? और इस तरफ एक कैरेक्टर था कृष्ण, जिसने जहां मिला कंप्रोमाइज किया, सच बोलने की जगह झूठ बोलना पड़ा तो बोला, जहां जिस तरह के कूटनीति अपनानी थी सब अपनाई, उसके बावजूद भी वो महान बना क्योंकि उसके जीवन को अगर महर्षि व्यास स्वामी दयानंद की भाषा में अगर आप कृष्ण के वो उज्ज्वल चरित्र पढ़ना चाहते, आप कृष्ण को लेकर गर्व करना चाहते, कृष्ण के जीवन को अपने जिंदगी में उतारना चाहते, आप महर्षि व्यास के महाभारत के कृष्ण के चरित्र को पढ़ें, आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी संस्कृति बदल जाएगी, आपका धर्म के प्रति आस्था बदल जाएगी, आप खुद महान बन जाएंगे। वो अलग बात है कि परवर्ती काल में जो लिटरेचर लिखे गए कृष्ण के नाम पर वो कृष्ण की बड़ाइयां कम की और उनके स्तुति के नाम पर छिछलेदार ढंग के बहुत सारे रोमांटिक और सेमी रोमांटिक बातें फैलाई गई। कृष्ण की चर्चा शुरू करते हैं। एक व्यक्ति पैदा होता है जेल में और मरता है किसी शिकारी के बाण से जंगल में, जब उसके साथ कोई बेटा बेटी पर कोई रिश्तेदार नहीं, सब मर चुके होते हैं, जंगल में अकेले मरता है और पूरी जिंदगी वो एक ही जगह कहीं नहीं टिका। मथुरा में जन्म हुआ, गोपों में पला, फिर मथुरा में आए, मथुरा के बाद वो गुरुकुल में पढ़ाई करने गए सांदीपनी ऋषि के आश्रम में, उसके बाद चलते रहे जो वो खुद गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो जीवन में उतारा कि काम करते गए उन दिनों जितने भी जहां भी जिस राज्य में जो जो राजा जो दुष्ट सेनापति जो जो अत्याचार करते थे सबको खत्म किया, किसी भी तरीके से वो खत्म किया, खुद कहीं राजा नहीं बने, खुद कहीं टिके नहीं, चलते रहे और आखिर में जब वो अपनी द्वारिका बसाई, अलग से शहर बसाया, जब देखा कि खुद के खानदान के लोग भी बिगड़ चुके हैं, कृष्ण के नाम पर अहंकार से चूर हो चुके हैं, अपने खानदान के भी बर्बाद करवा दिया और खुद जंगल में सड़ के मरे। ऐसा कैरेक्टर आपको दुनिया में बहुत बिरले मिलेंगे हर सारे अपमान अन्याय जो भी जो भी उन दिनों के से लेकर आज तक सहना था सहते रहे। जो उन्होंने किया वही उन्होंने कहा। मैं हमेशा कहता हूं अगर आपको जीवन का रहस्य जानना है, संसार को समझना है और आप गीता पढ़ते हैं, अगर आपको गीता पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो आप कृष्ण का चरित्र पढ़िए, पर कृपा करके ध्यान से पढ़िएगा, कहीं कृष्ण का चरित्र पढ़ते पढ़ते आजकल के बापू ना बन जाएं आप। आप असली चरित्र पढ़िएगा महर्षि व्यास के महाभारत के चरित्र को, फिर देखेंगे। आप गीता पढ़ नहीं सकते तो कृष्ण का चरित्र को पढ़िए, महाभारत के बेस पर चरित्र को। और अगर आप कृष्ण का चरित्र नहीं पढ़ सकते तो गीता पढ़िए, आपको कहीं कोई फर्क नहीं मिलेगा। गीता थियोरी है, कृष्ण का जीवन प्रैक्टिस है। उन्होंने जो कहा एक एक अक्षर गीता वो जीवन में उतारा है, जीवन में निभाया है और तभी बोला है। कोई हिपोक्रेसी नहीं, कोई पाखंड नहीं कि मैं कुछ बोलूं और कुछ करूं, दोनों को मिलाकर के चले। चतुर्थ अध्याय में जब आप बड़े प्रसिद्ध श्लोक सुनते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये उस व्यक्ति का तड़प है जो बाद में अवतार का, जब हमारे कल्चर में अवतार का कंसेप्ट आने लगा तो इसको अवतार के कंसेप्ट में रखा गया। ये उस व्यक्ति का तड़प है, वो उस व्यक्ति का जो इंटेंसिटी ऑफ डिजायरनेस है, जो एक कुछ करने के लिए जो इच्छा की जो घनत्व है उसको इंडिकेट करता है। जैसे आजादी की लड़ाई में आपने शहीदों को देखा, भगत सिंह से लेकर राजगुरु तक, जो यही लाइन को अपनी भाषा में बोलते थे कि मैं बार बार जन्म लूंगा यहां इस धरती मां को बचाने के लिए, इस धरती को आजाद करने के लिए, मुझे अगर 100 बार जन्म लेना पड़े मैं लूंगा इन 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 फिरंगी को मारने के लिए। उस तड़प को समझना बड़ी जरूरी है। कृष्ण की यही तड़प थी कि मुझे कितने भी जन्म लेना पड़े मैं जन्म लेने को तैयार हूं। क्यों? धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए, अच्छे लोगों को बचाने और बुरे लोगों को मारने के लिए। कृष्ण को ये बातें बताने की या सोचने की जरूरत की थी, क्योंकि समाज में या तो लोग हिपोक्रेट होते हैं या जो हिपोक्रेट नहीं होते हैं वो इतने ज्यादा सो कॉल्ड स्क्रिप्चरल रिलीजियस होते हैं, शास्त्रीय धार्मिक होते हैं, जैसे युधिष्ठिर, भीष्म और द्रोण जैसा। धन्यवाद जी। और जो कहा उन्होंने किया, पूरे जीवन धर्म के लिए, न्याय के लिए, लोक रक्षा के लिए पूरे जीवन को दिया। और हम उसकी थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे कैसे कैसे उन्होंने जीवन को दिया। तीसरे स्लाइड पर आएंगे। कृष्ण की कृष्ण का जो व्यक्तित्व है उसको समझने के लिए हमें महाभारत के कर्ण और अर्जुन का जो कर्ण और कृष्ण का जो संवाद है उसको समझनी बड़ी जरूरी है। जब महाभारत की लड़ाई में कर्ण के रथ की पहिया जमीन में घुस जाती है, और ये लाइटर कहीं बंद कर दें। महाभारत की लड़ाई में जब कर्ण का जो रथ की जो व्हील है वो जमीन में धस जाती है और उसका रथ उलट जाता है या गिर जाता है, तो कर्ण नीचे गिर जाता है। तभी अर्जुन कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, अब आप बाण चलाओ, कर्ण को मारो। कर्ण ये बात सुनता है और बोलता है, कितने कपटी हो, धर्म का कोई तुम्हें कोई धर्म अधर्म का फर्क नहीं, ये पाप है, ये अधर्म है। क्योंकि उन दिनों लड़ाई का जो नियम होते थे कि भाई बराबर के साथ लड़ाई होती थी, जो रथ पर बैठा है वो रथ वाले को मारता है, जो तलवार वाला वो तलवार वाले से ही लड़ाई करता है। तो कुछ रूल्स रेगुलेशन उन दिनों होते थे जिनको फॉलो करना पड़ता था। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं जमीन पर पड़ा हूं, अब तुम मारने के लिए कहते हो। कृष्ण मुस्कुराते हैं। अर्जुन जब हक बकाता है तो उसको बोलते हैं घबराओ मत, तुम कर्ण की बात मत सुनो, तुम गोली बाण चलाओ फिर दोबारा नहीं मार सकते हो। तब वो कर्ण को एक लेसन देते हैं। वो सात आठ श्लोक का श्लोकों की एक ग्रुप है, उसके हर श्लोक के आखिर में आता है क्वते धर्मस तदागता, तब तुम्हारा धर्म कहां गया था। तो कहते हे कर्ण, तुम्हें अब धर्म की याद आई, जब तेरे जान पर बात आई तू मरने को तैयार हुआ, जब तुम्हें मारने की बात आई तब तुम्हारा धर्म कहां था। जब शकुनी ने सभा में द्रौपदी का अपमान किया जो कि तुम्हारे भाई की पत्नी है, तुम उसके मजाक उड़ा रहे थे, तब तेरा धर्म कहां था। हे कर्ण, तब तुम्हारा धर्म कहां था जब जुआ के खेल में कमजोर युधिष्ठिर को ठग करके छल करके हरा करके उसकी पत्नी तक को बाजी लगाने के लिए उकसा रहे थे। तब तुम्हारा धर्म कहां था जब 12 वर्ष के वनवास के बाद और 1 साल के अज्ञातवास के बाद जब उनको राज्य वापस करना था, तब तुम और तुम्हारे दोस्तों ने कहा कि सुई के अगले हिस्से में रुक टिकने वाले धूल के बराबर भी नहीं देने वाले है। तब तुम्हारा धर्म कहां था कर्ण जब तुम्हारी सहमति से दुर्योधन ने भीम को विष पिलाया, जहर पिलाया। तब तुम्हारा धर्म कहां था जब वर्णावत में पांडवों को जऊ के घर में लाख के घर में आग लगाया गया। तब तुम्हारा धर्म कहां था जब द्रौपदी चिल्ला रही थी रो रही थी और तुम मस्त उसकी मजाक उड़ा करके अपनी जांग पर हाथ पीट रहा था। तब तुम्हारा धर्म कहां गया जब द्रौपदी के कपड़े उतरे जा रहे थे। तब तुम्हारा धैर्य तो पुरानी बात हो गई, तू भूल गया होगा। तब तुम्हारा धर्म कहां था 2-4 दिन पहले जब ये छोटा सा बच्चा अभिमन्यु को 7-7 महारथी घेर के मार रहे थे, ये कौन से युद्ध का धर्म था। अर्जुन, दुनिया में हर पापी हमेशा धर्म का नाम ही लेता है अपने को बचाने के लिए। तू उस धर्म अधर्म के चक्कर में मत पड़ो। शत्रु को मारना धर्म है, अन्यायी को मारना धर्म है, तुम मारो। काश हमारे देश की सरकार भी इनको समझ जाती कि जो टेररिस्ट हैं, जो नक्सली हैं, जो रेपिस्ट हैं, जो क्रिमिनल हैं, उनको सजा मिलना जरूरी है। उनकी ह्यूमन राइट की ख्याल रखोगे तो करोड़ों की ह्यूमन राइट बर्बाद हो जाएगी, तो ये देश सुधर जाता है। ये धर्म का पक्ष है। तो आप समझ सकते हैं कृष्ण कितनी क्लियर विजन के साथ चलते हैं। वो जो धर्म को समझने की जो एक क्लियर विजन चाहिए, जो एक स्पष्ट दृष्टि चाहिए, जो कि केवल शास्त्र में नहीं है, थोड़ी बहुत अकल की यूज करने की जरूरत है। इसीलिए कृष्ण महान है। कृष्ण बदनाम हुए पर कृष्ण महान है क्योंकि वो संसार को बचाने के लिए लगे थे। कृष्ण को लड़ाई से कोई फायदा नहीं था, वरन नुकसान हुआ, पर हर परिस्थिति में एक जैसे रहने वाले। अगले स्लाइड देंगे। लड़ाई के बाद कौरव सेना, कौरव के पुत्र मर चुके हैं, 100 बेटे मर चुके हैं। गांधारी से आशीर्वाद लेने के लिए पांडव और कृष्ण पहुंचे। गांधारी कृष्ण का नाम सुनते ही बिलखने लगी, रोने लगी और गुस्से से अभिशाप देने लगी कि तूने मेरे खानदान को बर्बाद किया और हमें अपने बच्चों के लिए रो रो करके मरने के लिए छोड़ दिया। मैं तुम्हें अभिशाप देती हूं, तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही हो, तेरे खानदान में भी कोई ना रहे, तू भी ऐसे ही बिना बच्चे वाले बिना खानदान होकर के मर। अर्जुन कांपने लगा, पांडव कांपने लगे। कृष्ण अब भी मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुरा कर कह रहे थे, गांधारी ऐसा ही होगा, चिंता मत करो। जब आप गीता में पढ़ते हैं स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, जब अर्जुन पूछता है कि स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा है, उस योगी की क्या परिभाषा है जो योग को सिद्ध कर चुका है, तो गीता में आप पढ़ते हैं दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। जो सुख में भी उछले नहीं, दुख में जो गम में न डूबे, निंदा और प्रशंसा में, अच्छाई और बुराई में, लाभ और हानि में जो एक जैसा रहे, वो योगी है। ये कृष्ण सिर्फ थ्योरिटिकली केवल दूसरों को समझाने के लिए नहीं कहा था, उसका जीवन भी वैसे ही था। इसीलिए गांधारी शाप देती है तो भी हंसकर ही वो लेते हैं। संसार में जितने तरह के बुराइयां हैं सबको उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, पर खुद कहीं चिपके नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कंस को मारा तो कंस के पिता को राजा बनाकर आगे बढ़े, जरासंध को मारा उसके बेटे सहदेव को राजा बनाया, शिशुपाल को मारा तो उसके बच्चे को, हजारों राजाओं को उन्होंने शाप कराया उन दिनों, जितने बदमाश राजा थे, पर खुद, जबकि धर्म के हिसाब से, जिसको धर्म का मतलब कानून है, उन दिनों के धर्म के हिसाब से जो जिस राज्य को जीतता है उस राज्य का मालिक वही होता है। कृष्ण हजारों राजाओं राज्यों का राजा बन सकते थे, पर वो कहीं नहीं बने। यहां तक कि जो उन्होंने अपने लिए एक अलग से शहर बसाया द्वारिका, उस द्वारिका का राजा भी वो खुद नहीं थे, वो एक गणराज्य बनाया। गणराज्य एक तरह के सेमी डेमोक्रेसी है, जिसमें डेमोक्रेसी में इलेक्शन होता है, उसमें इलेक्शन नहीं है, पर वो एक ग्रुप है, जैसे मैनेजिंग कमिटी होती है आपके, 10-12 की एक कमिटी बनाई और उस कमिटी के हेड बलराम थे और वो उनमें से वन ऑफ डायरेक्टर थे, वो मैनेजिंग डायरेक्टर वो थे, वो द्वारिका का राजा नहीं थे, पर पब्लिक उनको द्वारिकाधीश ही कहती थी, क्योंकि आफ्टर ऑल जो महान है वो महात्मा गांधी सरकार में रहे न रहे, चलती तो उन्हीं की थी, तो कृष्ण की चलती थी, पर कभी वो अपने कहीं पद उनको नहीं चाहिए था। जिंदगी भर चलते रहे। अगला स्लाइड लगाएंगे। कृष्ण का जो कृष्ण का चरित्र है कि संसार में हर वो परेशान बच्चे व्यक्ति को उद्धार करना है, उस गंदे लोगों को साफ करना है, अच्छे लोगों को बढ़ावा देना है, समाज में धर्म की स्थापना है, जो वो गीता में कृष्ण को प्रवचन देते समय बोलते हैं, वो वही उनका जीवन का सार था और उन्होंने ऐसा ही जिया। कृष्ण के कुछ और पक्षों को देखेंगे अगली स्लाइड। कुछ मानवीय चरित्रों को देखिए जो हम और आप निभाते हैं। कृष्ण महाभारत के घटना में हमें दो तरह के दोस्ती की, जो फ्रेंडशिप की, दो एग्जांपल्स मिलते हैं, एक द्रुपद और द्रोण की। द्रोण और द्रुपद भी गुरुकुल में पढ़ते थे, द्रोण ब्राह्मण था, द्रुपद राजपुत्र था, ब्राह्मण गरीब होता है, दोनों गुरुकुल में पढ़े, दोनों मित्र बने, बहुत बहुत घनिष्ठ मित्र बने, क्लोज फ्रेंड बने। गुरुकुल की पढ़ाई के बाद द्रोण राजा बना, द्रुपद राजा बना और द्रोण आचार्य बने, पर गरीब थे, अभी उनको कोई ज्यादा साधन नहीं था, इतने गरीब कि उनके बच्चे को दूध पिलाने के लिए उनके पास गाय भी नहीं थी। पत्नी ने उनको बार बार कहा, द्रुपद तुम्हारा मित्र है, कुछ तो मांग कर लाओ। द्रोण स्वाभिमानी थे, बोले कैसे जाऊं, ये गलत बात है, अब मित्र का नाम लेकर के मैं उसे मांगने जाऊं, गाय तो ले आओ, कम से कम बच्चे को दूध मिले। पत्नी के बार बार कहने पर द्रोण गए। दरवाजे पर जब जो सिपाही है उसके द्वारा समाचार भिजवाया तो द्रुपद सुने नहीं। बोले राजा का किसी भिखारी से कभी कोई दोस्ती नहीं होती है। जो द्रोण किसी तरह अंदर गए, उनको लात मार करके द्रुपद भगा दिया। तेरी हिम्मत कैसा हुआ, कैसे हुई कि गरीब ब्राह्मण होकर के एक राजा से दोस्ती की दुहाई देने आए हो। उसका परिणाम हुआ महाभारत की लड़ाई में ये बड़ा एक भूमिका निभाई। ये एक दोस्ती की नमूना है कि स्कूल की कॉलेज की पढ़ते हुए जो 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 दोस्त हैं, जब हम बड़े बन जाते हैं कैसे भूल जाते हैं, या कोई छोटा बनता है हमारा दोस्त कैसे दुत्कारते हैं। एक दूसरे दोस्ती है कृष्ण और सुदामा की। सुदामा भी ब्राह्मण है, गरीब है, कृष्ण भी राजपुत्र है। दोनों पढ़ाई, दोनों में दोस्ती थी। गुरुकुल के पढ़ाई के बाद दोनों अपने अपने स्थान पर जाते हैं। कृष्ण राजमहल में द्वारिका में, सुदामा गरीब है, वहां भी उसकी पत्नी कहती है तुम्हारा मित्र राजा है, जाओ कुछ मांग करके लाओ। बड़े शर्मा करके बड़े मुश्किल से जाता है। रास्ते में खाने के लिए कुछ वो चावल की भुना हुआ चावल, कढ़ाई में भुना हुआ चावल थोड़ी सी ले जाती है। जब द्वारपाल कृष्ण को समाचार देते हैं कि सुदामा नामक कोई गरीब ब्राह्मण बाहर इंतजार कर रहा है, तो महर्षि व्यास लिखते हैं कृष्ण के कपड़े कहां थे कृष्ण को पता नहीं था, कृष्ण के अलंकार कहां थे पता नहीं था। कृष्ण दौड़े दौड़े बेहोशी के हालत में दौड़े दौड़े आते हैं और सुदामा के गले लगते हैं। और अगली स्लाइड। और जो उन दिनों की पारंपरिकता थी, उनके उनके चरण धोना, उनके सत्कार करना, और रो रो करके पागल है। एक एक अच्छे बड़े आदमी का और एक छोटे आदमी की जो फर्क है वो एहसास करने की बात है। हम कृष्ण की और एक दो बात करना चाहेंगे अगली स्लाइड में। महाभारत के समय हर पात्र जानता है कि कृष्ण से बड़ा पूजनीय कोई नहीं है, क्योंकि सबसे उस समय के सबसे बड़ा कोई योद्धा है तो कृष्ण था। भीष्म से भी बड़ा योद्धा था, कोई ज्ञानी था तो कृष्ण था, कोई कोई सबके द्वारा एक्सेप्टेबल था, जो कोई हर कोई जिसको रेस्पेक्ट करता था वो कृष्ण था। क्योंकि अभी तक कृष्ण कितने दुष्ट राजाओं को मार चुके हैं, कितने तरह के काम कर चुके हैं, सबसे पूजनीय है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जब काम बांटे जाते हैं कि किसको क्या काम करना है, ड्यूटीज बांटे जाते हैं, और यज्ञ की एक नियम होता है कि जो उसको कहते हैं अग्रपूज्य पूजा, जो सबसे ज्यादा पूजनीय होता है, रेस्पेक्टेबल होता है, उसको यज्ञ के समय उसका उसका सम्मान किया जाता है। तो विचार विमर्श में भीष्म से लेकर द्रोण तक, धृतराष्ट्र तक, सबका एक ही मत है कि कृष्ण ही अग्रपूज्य हैं, क्योंकि वही ज्ञान में, बल में, शक्ति में, हर मामले में सबसे आगे हैं। कृष्ण सबसे पूजनीय है, और जब काम बांटा जाता है किसको क्या करना है, कृष्ण अपने लिए जो काम चुनते हैं कि जो भी अतिथि इस यज्ञ में आएंगे उन सबका पैर धोने का काम मेरा होगा। और कृष्ण सबके पैर धोते हैं, छोटे से बच्चे से लेकर के किसी भी तरह के व्यक्ति जो भी यज्ञ में पधारे, ये पैर धोना शायद जो जो थोड़ा भारतीय संस्कृति को बारीकी से जानते हो समझ पाएंगे। आज भी भारत में जहां शहरी सभ्यता थोड़ी कम पहुंची है, अतिथि अगर मेहमान घर में आता है तो उसका पैर धोया जाता है, घर धोते हैं, उसको आसन देते हैं, बैठने के लिए पानी देते हैं। तो आजकल पैर धोने की तो परंपरा खत्म तो नहीं हुई, अभी भी बहुत सारे जगह है, पर बड़े बड़े शहरों में नहीं है। तो हो सकता है आपको इस समझ में नहीं आए कि पैर धोने का क्या मामला है। तो पैर धोना, कोई भी अतिथि घर में आए उसके पैर धोया जाता है। तो वो काम कृष्ण ने चुना अपने लिए। जब पांडव और कौरवों में कोई समझौता नहीं हो पा रहा था, अज्ञातवास के बाद कृष्ण खुद दूत बन के आते हैं, मैसेंजर बन के आते हैं, महाभारत की लड़ाई में वो सारथी बनते हैं। इनमें से कोई भी ड्राइवर सारथी का, सारथी सुनते ही आपको थोड़ा कुछ गर्व होगा, इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन है ड्राइवर बनते हैं। इनमें से कोई भी काम ऐसा नहीं था जो कृष्ण के लायक था, पर वो सब काम करते थे और खुश थे, दिल से करते थे। ये जो विनम्रता है, ये सिर्फ उन महामानवों में, उन महात्माओं में, महान आत्माओं में ही देखने को मिलती है। अगली स्लाइड दिखाएंगे। कृष्ण की जो, कृष्ण भक्तों ने जो बदनामी की और कृष्ण खुद जिसको नकारते हैं, कृष्ण भक्त बड़े गर्व के साथ अपने भगव, जो सो कल्ड कृष्ण भक्त हैं, मुझे लगता है मैं कृष्ण का बड़ा भक्त हूं और आप सब बड़े भक्त हैं, उन्होंने कृष्ण की स्तुति में, मतलब ऐसा कभी आपने किया कृष्ण को छोड़ करके अपने पिता माता अपने टीचर, कभी आपने ऐसी तारीफें की कि मेरे बाप के 50-50, 100-100 गर्लफ्रेंड्स हुआ करते थे, लड़कियों के कपड़े उतारता था। ये हमारे कल्चर में है, पता नहीं क्यों भगवान के नाम पर हम ऐसा करते हैं, जबकि इसका कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है, उसके बावजूद हम करते हैं और बड़े प्राउड फील करते हैं। कृष्ण महाभारत में, महर्षि व्यास लिखते हैं, जब महाभारत की लड़ाई में अश्वत्थामा कृष्ण के पास जाता है, जब अश्वत्थामा सेनापति बनेगा, ज्यादातर सेनापति खत्म हो चुके हैं, दुर्योधन जाकर के तालाब में छुपा हुआ है, अश्वत्थामा कृष्ण के पास आता है कि आप मुझे, आप तो लड़ाई करते नहीं हो, वो जो आपके सुदर्शन चक्र है वो मुझे 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए दे दो, मैं लड़ाई खत्म कर देना चाहता हूं। कृष्ण मुस्कुराकर बोले तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसी हुई है मांगने के लिए? ये वो सुदर्शन चक्र है जिसको मेरे बेटे ने भी कुछ कभी मुझे मांगा नहीं, और मेरा बेटा कौन? तो उसको कहते हैं जिसको मेरे जीवन में 48 साल के ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद, ध्यान दीजिएगा, 48 साल के ब्रह्मचर्य के पालन करने के बाद मेरी एकमात्र पत्नी रुक्मिणी, एकमात्र पत्नी, बेचारा कृष्ण चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं मेरी एक ही बीवी है, क्यों मेरे 100 बीवियां 16,000 बीवियां बनाते फिरते हो? तुम्हें रखना है रखो, मेरे नाम पर क्यों इसको सही साबित करते हो? मेरी एकमात्र पत्नी रुक्मिणी के विवाह के बाद 12 साल तक हम दोनों ने ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करके जिस संतान को पैदा किया प्रद्युम्न, वो भी अगर मुझे, उसको भी इतना हिम्मत नहीं है कि वो मुझे सुदर्शन चक्र मांगे, तो मांगते कैसे हो? कृष्ण खुद अपने मुंह से अपने ब्रह्मचर्य की बात को बोलते रहते हैं, पर मुझे समझ में नहीं आता हम सो कॉल्ड भक्त क्यों कृष्ण का कभी भी वो पक्ष पब्लिक को नहीं बताते जो कृष्ण का उजला हुआ पक्ष है, क्यों ये व्यभिचार वाली बातों को ज्यादा हाईलाइट करते? उसका कारण भी है, हमारे धर्मात्माओं को जो सो कॉल्ड बाबा लोग हैं उनको उससे बहुत फायदा होता है, जैसे कि हम आजकल देखते हैं किस तरह के फायदे उनको मिलते हैं। मुझे याद है, मैं, आप कहेंगे हर बात पर आप थोड़ी नेगेटिव बात कर देते हो, बड़ी जरूरी है, थोड़ी बहुत चीजें आपको चोट पहुंचाना जरूरी होती है। 1-2 साल पहले ये पंजाब में जो एक कौम है, सच्चा सौदा, पूरा नाम मुझे याद नहीं, उनके जो गुरु थे उनको भी इसी तरह के, जो आजकल आप टीवी में देखते होंगे, कोई महामहानीय बापू जी फंसे हुए हैं सेक्स स्कैंडल में, वैसे वो भी फंसे थे, और वो लड़की के खानदान को मार दिया गया, जो ये भी मार देते कितनों को मारा है, तो वो फंसे थे, और वो लड़की ने जो प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा उसके बाद उसको कत्ल कर दी गई थी, चिट्ठी, वो चिट्ठी पहुंच गई तब वो डिस्क्लोज हुआ। जब वो महाराज उसको बुलाए उसके साथ गलत संबंध बनाने के लिए, और क्या कहा, जब वो बच्ची ने रोका, बोला तो कृष्ण को भगवान मानते हो कि नहीं? बोले मानता हूं। वो अगर इतनी सारे गोपियां रख सकता है तो आम मैं क्यों नहीं रख सकता? चलिए ये विषय अलग है, तो खैर कृष्ण के नाम पर बहुत सारे लोग अपने अपने सुख बटोरते हैं, पर हमारा निवेदन है कि अपने भगवानों को रिस्पेक्ट देना सीखें और ढंग से रिस्पेक्ट देना सीखें। और अगर आपको बुराई करनी है तो हिस्टोरिकली बुराई करिए और अपनी तारीफ के नाम पर मत करें। अगली एक दो चीजें और कह के समाप्त करूंगा, समय हो चुका है पर मैं इसको सबक करता हूं। जब दूत बन के कृष्ण पहुंचे, जब जब महाभारत की लड़ाई होने से पहले, लड़ाई ना हो उसकी चिंता, कृष्ण को कहा जाता है उन्होंने युद्ध भड़काने वाले हैं, पर युद्ध कृष्ण ही अकेला व्यक्ति है, जीवन भर कोशिश करते रहे कि समझौता हो जाए, शांति हो, लाखों करोड़ों लोग मरेंगे, और वो खुद दूत बन के गए। अर्जुन के कृष्ण के दुर्योधन के घर पर पहुंचते हैं, दुर्योधन उनको सत्कार करने के लिए कहता है आप हमारे घर में आइए, भोजन करिए, भूख खाने का समय है। तो कृष्ण एक मजेदार बात कहते हैं, सुनिएगा। कहते हैं संप्रति भोज्यानि अन्नानि आपद भोज्यानि वा पुनः न त्वं संप्रियसे राजन् न चैवापद गता वयम्। ये वैसे ही मैंने आपको बता रहा हूं, स्वाभिमान देखिए। यदि देखो दुर्योधन, विदुर ने भी मुझे बुलाया, विदुर बेचारा गरीब है, गरीब घर में रहता है, वो साग भात बनाता है, तुम्हारे घर में राजमहल की भवन है, पर खाना आदमी दो कारणों से दूसरों के घर में खाता है, याद रखिएगा, आपको भी जरूरत पड़ेगी बोलने के लिए। या तो आपसे प्यार हो या खुद इतना भूखा हो। दुर्योधन, तुम्हारा मेरे से प्यार नहीं है और मैं इतना भूखा भी नहीं हूं, तो अच्छा है कि मैं विदुर के घर में साग भात खा लूंगा। चलिए अगला और आगे लगाएंगे, बस खत्म करते हैं। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बतानी है। ये जो चित्र है, ये चित्र कुछ इंडिकेट करते हैं, इसीलिए इसे पहले आपने देखा, वो कालिया नाग पर बैठा थे, वो कृष्ण बैठे थे। मुझे कालिया नाग से कोई लेन देन नहीं है, कालिया नाग ब्रह्मचर्य का, जो दृढ़ ब्रह्मचर्य का प्रतीक है कि व्यक्ति जैसे नाग को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, कृष्ण अपने जीवन भर कैसे ब्रह्मचर्य को पालन करते थे। ये देखिए, कृष्ण का दो रूप संसार में प्रसिद्ध है, एक तो चक्रधारी कृष्ण, एक मुरलीधर कृष्ण है। और कृष्ण की जब भी आप फोटो देखेंगे, कोई भी कोई फोटो देखेंगे, मुस्कुराता हुआ चेहरा मिलेगा। वो गीता की वो जो योगी का लक्षण है कि हर परिस्थिति में एक जैसा, सुख में हो दुख में हो, वो गांधारी अभिशाप देती हो कि द्रौपदी प्रशंसा करती हो, हर परिस्थिति में मुस्कुराने वाला, ये मुरली उसकी प्रतीक है, वो ध्वनि का प्रतीक है, वो सुंदरता का, उस मिठास के प्रतीक है। कृष्ण हमेशा पोलाइटली बात करते थे, वो कभी टेंस में कभी स्ट्रेस में नहीं दिखते थे, पर जब जरूरत पड़े चक्र चलाना जरूरी है, शस्त्र और शास्त्र दोनों की जरूरत होती है, पर चक्र इसीलिए नहीं चलाना है कि मुझे गुस्सा आया, इसीलिए कि प्राणी मात्र की रक्षा करनी है, समाज की रक्षा करनी है, पर दोनों परिस्थिति में वो समाज एक जैसा है। इसीलिए आखिर में महर्षि व्यास गीता के आखिर में और महाभारत में बार बार इस बात को कहते हैं, यतो धर्म ततो जय, यतो कृष्ण ततो धर्म। जहां जहां धर्म होता है वहीं हमेशा जय होता है, और जहां कृष्ण होता है वहां धर्म ही होता है। इसलिए आखिर में व्यास कृष्ण की चरित्र को बारीकी से समझने वाला व्यास लिखते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण, योगेश्वर जो योग को साध रखा है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आदि को जो साध रखा है, और उनमें श्रेष्ठ भी है, वो सिर्फ बलशाली नहीं थे, ज्ञानी नहीं थे, वो प्रचंड योगी भी थे। तभी तो महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश करते हैं। कभी आप लड़ाई के मैदान में इतनी शांत भाव से दर्शन की चर्चा कर सकते हैं, वो वही कर सकता है जो दोनों परिस्थिति में काम एंड कूल हो, शांत हो, ये उस योगी का लक्षण है। तभी महर्षि व्यास लिखते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। जहां योगेश्वर कृष्ण हो, योगी कृष्ण हो, जहां धनु चलाने वाला अर्जुन हो, वहीं पर विजय है, वहीं पर लक्ष्मी है। ये मेरी मति है। आप लोगों ने ध्यान से सुना, थोड़ा समय आज ले लिया, कृष्ण के नाम पर इन समयों को आप माफ कर दीजिएगा, आपको सुनाने की लालसा कृष्ण के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।